ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 25 फरवरी 2024 के लिए है। विषय मन, स्वर्णपथ, रोमियो। तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बढ़ाई करो। उत्तरदायी अध्ययन यशाया। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकले और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धाम की खोज करो तो ये सब वास्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। लूका। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम मुंह में क्या विवाद कर रहे हो, सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर को चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। योहना। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु योहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, और याकूब का कुआं भी वहीं था, सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया। और ये बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने धोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरुण जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सौता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलम में, परंतु वो समय आता है वरुण अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। फिलिप्पियों। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहास संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। केवल एक ही मन है और ये सदैव मौजूद शक्तिमान मन मनुष्य द्वारा प्रतिबिंबित होता है और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। आप सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य ईश्वर का पालन करना, एक मन रखना और दूसरों को अपने जैसा प्यार करना है। सबसे बड़ी कठिनाई इस अज्ञान में है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जीवन, सत्य और प्रेम मनुष्य को अमर बनाते हैं। सभी को नियंत्रित करने वाले अमर मन को भौतिक क्षेत्र तथाकथित साथ ही आध्यात्मिक में सर्विस के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। केवल एक मैं या हम है, बल्कि एक दिव्य सिद्धांत या मन है जो सारे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। पुरुष और महिला अपने व्यक्तिगत चरित्रों में हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहते हैं, एक सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं। ईश्वर की रचना की सभी वास्तुएं एक मन को प्रतिबिंबित करती हैं, और जो कुछ भी इस एक मन को प्रतिबिंबित नहीं करता है वो दुषापूर्ण और गलत है। यहाँ तक कि ये विश्वास भी कि जीवन, पदार्थ और बुद्धि दोनों मानसिक और भावतिक हैं। नश्वर मन पुष्टि करता है कि मन शरीर के अधीन है, कि शरीर मर रहा है, कि इसे दफनाया जाना चाहिए और धूल में विघातित होना चाहिए, लेकिन नश्वर मन की पुष्टि सत्य नहीं है। मनुष्य के लिए ईश्वर उसके विश्वास से कहीं अधिक है, और जितना कम हम पदार्थ या उसके नियमों को स्वीकार करते हैं उतना अधिक अमृता हमारे पास होती है। चेतना एक बेहतर शरीर का निर्माण करती है जब सामग्री में विश्वास की जीत होती है। आध्यात्मिक समझ से भावतिक विश्वास को ठीक करें तो आपको नए सिरे से बनाएगी। आप फिर से ईश्वर को नाराज करने के अलावा कभी नहीं डरेंगे, और आप कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि हृदय या शरीर का कोई भी हिस्सा आपको नष्ट कर सकता है। सृष्टि के विज्ञान को जानते हुए, जिसमें सब कुछ मन और उसके विचार हैं, यीशु ने अपने साथी देशवासियों के भावतिक विचारों को फटकार लगाई। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समूहों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इंद्रियों की वास्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा हमें ईश्वर के आध्यात्मिक विचारों को समझने की कितनी अधिक कोशिश करनी चाहिए। आत्मा की लय को समझने और पवित्र होने के लिए विचार विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक होना चाहिए। मसीह अच्छाई को व्यक्त करने वाला सच्चा विचार है, मानव चेतना को बोलने वाले मनुष्यों के लिए ईश्वर का दिव्य संदेश है। मसीह निराकार आध्यात्मिक है, हाँ दिव्य छवि और समानता, इंद्रियों के भ्रम को दूर करने वाला, मार्ग, सत्य और जीवन, बीमारों को ठीक करने वाला और अशुद्ध आत्मा को निकालने वाला, पाप, बीमारी और मृत्यु को नष्ट करने वाला। जैसा कि पौलुस कहता है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। भगवान मनुष्य सहित ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। नश्वर मन आध्यात्मिक को भावतिक में बदल देगा, और फिर इस त्रुटि की नश्वरता से बचने के लिए मनुष्य की मूल सब को पुनर्प्राप्त करेगा। ईश्वर के स्वयं की छवि में बनाए गए नश्वर अमर की तरह नहीं है, लेकिन अनंत आत्मा सभी होने के नाते नश्वर चेतना वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंतम पैदावार होगी और गायब हो जाएगी, और सही और हमेशा के लिए होने का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। वास्तविक विचारों को भ्रम से कैसे अलग किया जा सकता है? प्रतीक की उत्पत्ति सीखकर। विचार दिव्य मन से निकले हुए हैं, मस्तिष्क या पदार्थ से उत्पन्न होने वाले विचार नश्वर मन की शाखाएं हैं, वो नश्वर भावतिक विश्वास हैं। विचार आध्यात्मिक, सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत हैं। हमारे गुरु ने मानव जाति के विचारों को आसानी से पढ़ लिया, और इस अंतर्दृष्टि ने उन्हें उन विचारों को सही ढंग से निर्देशित करने में सक्षम बनाया। हमारे गुरु ने नश्वर मन को वैज्ञानिक आधार पर, मन की सर्वव्यापी उपस्थिति के आधार पर पढ़ा। इस विवेक का एक अनुमान आध्यात्मिक विकास और एक मन की अनंत क्षमताओं के साथ गठबंधन का संकेत देता है। उसके मन का प्रभाव हमेशा उपचार करने और बचाने के लिए था, और ये नश्वर मन को पढ़ने का एकमात्र वास्तविक विज्ञान है। पौलुस ने कहा, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम अपनी आध्यात्मिकता, सत्य और प्रेम के प्रति अपनी निष्ठा के अनुपात में ईश्वर या जीवन के पास जाते हैं, और उस अनुपात में हम सभी मानवीय आवश्यकताओं को जानते हैं, और बीमारों और पापियों को ठीक करने के उद्देश्य से उनके उच्चार को समझने में सक्षम हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि परमेश्वर की व्यवस्था से छुप नहीं सकती। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है, जो आध्यात्मिक समझ की रोशनी है, जो आत्मा की सम्यकता को प्रदर्शित करती है, भावतिक अर्थ की नहीं। ये आत्माबोध मानव मन में तब आता है जब जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। इस तरह के अंतर्ज्ञान से पता चलता है कि जो कोई भी सद्भाव को बनाता और बनाए रखता है, वो किसी व्यक्ति को अच्छा करने के लिए सक्षम बनाता है, लेकिन बुराई को नहीं। जब आप इस तरीके से मानव मन को पढ़ने और उस त्रुटि को समझने में सक्षम हो जाएंगे जिसे आप नष्ट कर देंगे, तो आप उपचार के संपूर्ण विज्ञान तक पहुंच जाएंगे। सामरी स्त्री ने कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये मसीह तो नहीं है। ये दर्ज किया गया है कि यीशु जब वो एक बार अपने छात्रों के साथ यात्रा कर रहा था, उनके विचारों को जानता था, उन्हें वैज्ञानिक रूप से पढ़ता था। उसी प्रकार उसने रोग को पहचाना और रोगियों को ठीक किया। एक क्षण के लिए सुचित हो जाएं कि जीवन और बुद्धि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, ना तो भावतिक में और ना ही भावतिक के साथ, तो शरीर तब कोई शिकायत नहीं करेगा। यदि बीमारी में विश्वास से पीड़ित हैं, तो अचानक आप खुद को स्वस्थ पाएंगे। शरीर को आध्यात्मिक जीवन सत्य और प्रेम द्वारा नियंत्रित किए जाने पर दुख को आनंद में बदल दिया जाता है। मनुष्य अपने निर्माता द्वारा शासित, जिसके पास कोई अन्य मन नहीं है, अंजीलवादी के कठान पर लगाया गया है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न दिव्य कठान हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के सुनने को समर्थ कर सकता है, और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।